नमस्कार भारत, आज 19 फरवरी दिन रविवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा की रैली में फिर लगाया मीडिया पर झूठी खबरें छापने का आरोप।
The dishonest media, which has published one false story after another.
यूपी में आज तीसरे चरण का मतदान, 12 जिलों की 69 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट, कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। सुनिएगा 2005 के दिल्ली धमाकों में मारे गए एक कारोबारी की पत्नी का दर्द। न्यूज मेकर्स में आज मुलाकात ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले तबला वादक संदीप दास से।
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बजा रहा हूँ, चाहे मैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में बजाया हूँ, हॉलीवुड बॉल में बजाया हूँ, हमेशा कुर्ता पजामा।
होगी उर्दू अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के मेलबर्न शहर में एक रैली में फिर से मीडिया की आलोचना की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मीडिया सच नहीं दिखाना चाहता बल्कि अपने एजेंडे पर ही चलना चाहता है। फ्लोरिडा में इस रैली का आयोजन व्हाइट हाउस ने नहीं बल्कि ट्रंप की प्रचार टीम ने किया था। राष्ट्रपति की प्रवक्ता सारा हकाबी सैंडर्स ने कहा कि राष्ट्रपति सीधे लोगों से बात करना चाहते थे, इसलिए इस रैली में आए थे। इस रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने 7 मुस्लिम बहुल देशों से आने वाले लोगों क्योंकि अमेरिका में प्रवेश पर रोक के कार्यकारी आदेश का बचाव किया और कहा कि हम बुरे विचार वाले लोगों को अपने देश में नहीं चाहते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश पर अदालत रोक लगा चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चुनाव में उन जिलों की विधानसभा सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं जो सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया जैसी समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली जिलों के अलावा राजधानी लखनऊ और कानपुर में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। लखनऊ शहर की 2 सीटों से मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लवरोव ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच सोमवार से युद्ध विराम लागू होगा। सर्गेई लवरोव ने कहा कि युद्ध विराम के साथ साथ भारी सैनिक साजो सामान भी हटाया जाएगा। विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच युद्ध विराम के लिए म्यूनिख में यूक्रेन, रूस, जर्मनी और फ्रांस के बीच बातचीत में समझौता हुआ था। म्यूनिख में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में यह समझौता हुआ था जहां अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा था कि रूस को यूक्रेन में उसकी गतिविधियों के लिए जवाबदेह बनाना होगा। सर्गेई लवरोव ने इस युद्ध विराम के बारे में ये कहा।
बीस फरवरी को इस संपर्क समूह में युद्ध विराम को लेकर सहमति बन गई थी और उन जगहों से भारी सामान भी हटाया जाएगा। हम इस फैसले का समर्थन करते हैं और इस पर प्रतिबद्ध हैं कि नाकामी बर्दाश्त नहीं होगी। देखते हैं कि दोनों पक्ष की क्या प्रतिक्रिया रहती है। सर्गेई लवरोव के शब्द आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इराकी सेना मोसुल के पश्चिमी हिस्से में बड़े सैनिक अभियान की तैयारी कर रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने इस इलाके में फंसे हजारों आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी दी है। इराक में मानवाधिकार की संयुक्त राष्ट्र के संयोजक लीस ग्रैंट ने कहा कि पूर्वी मोसुल को अपने नियंत्रण में लेने की लड़ाई के दौरान सेना ने लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा था और इस बार भी यही उम्मीद है। स्पेन में हजारों लोग सीरिया और अन्य देशों से आने वाले और ज्यादा शरणार्थियों को शरण देने की मांग के साथ सड़कों पर उतरे। इन लोगों का कहना था कि स्पेन की रूढ़िवादी पार्टी की सरकार बहाने छोड़कर शरणार्थियों की मदद करे। स्पेन ने 17,000 शरणार्थियों को शरण देने का वादा किया था जिसमें से हाल ही में 1,000 से ज्यादा लोगों को शरण दी गई है। इस प्रदर्शन के आयोजक कासा नोस्ट्रा वोस्ट्रो संस्था के से जुड़े रूबेन वेगन्सबर्ग ने ये कहा। यूरोप की सीमाओं पर इंतजार कर रहे हजारों लोगों को लाने की चाबी सरकार के पास है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार शरणार्थियों के लिए कुछ करे और स्पेन में आए प्रवासियों के जीवन को भी बेहतर बनाने के कदम उठाए। ये थे रूबेन वेगन्सबर्ग के शब्द। वहीं स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि एक नौसैनिक जहाज को लीबिया के तट से बचाया गया है। इसमें सवार 112 प्रवासियों की जान बचा ली गई है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ते में दूसरी बार मीडिया पर हमला बोला है। फ्लोरिडा के मेलबर्न में ट्रंप चुनाव अभियान वाले तेवर में नजर आए और अपने समर्थकों से कहा कि मीडिया सच नहीं दिखाना चाहती और अपने अलग एजेंडे पर काम कर रही है। ट्रंप ने कहा कि वो अमरीकियों से बिना झूठी खबरों की आड़ के सीधे संवाद करना चाहते हैं और वो मीडिया की सच्चाई सामने लाना जारी रखेंगे। इस बेईमान मीडिया ने एक के बाद एक झूठी खबरें छापी हैं। उनके पास खबरों का कोई स्रोत ना हो तब भी वो पुख्ता स्रोत होने का दावा करती है। मीडिया सच रिपोर्ट नहीं करना चाहती। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। मीडिया के अलावा उन्होंने अमरीका की सुरक्षा, नौकरियों, ओबामा प्रशासन की नीतियों और इस्लामिक स्टेट के बारे में भी बात की। और अब सीधे चलते हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, आज ट्रंप अपने चुनाव प्रचार वाले तेवर में नजर आ रहे थे। सबसे पहले ये बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस तरह रैली करना सामान्य बात है या ट्रंप एक अलग उदाहरण पेश कर रहे हैं?
काफी हद तक एक अलग उदाहरण पेश कर रहे हैं। पहले राष्ट्रपति ओबामा जब थे, जब आप कोई एजेंडा अपने समर्थकों के सामने पेश करने की कोशिश करते हैं, जैसे राष्ट्रपति ओबामा को ने जब मंदी चल रही थी और काफी पैसा लगाना पड़ा था, कंपनीज को अमेरिकी खजाने से देना पड़ा था, तब वो पैगाम देने के लिए वो रैली करने गए थे। राष्ट्रपति बुश भी इराक युद्ध से पहले गए थे। लेकिन ये काफी बिल्कुल एक अनूठा सा उदाहरण है, क्योंकि अभी ना तो कोई एजेंडा, कुछ नई चीज वो कह रहे हैं, बिल्कुल सारे चुनावी बातें दोहरा रहे हैं। उनसे पूछा गया रैली से ठीक पीछे, उसी पहले एयरफोर्स वन में, कि वो क्यों कर रहे हैं चुनाव की तरह का ये अभियान, चुनावी रैली। तो उनका जवाब ये था कि जिंदगी एक अभियान है, अमेरिका को फिर से महान बनाना एक अभियान है, और मैं ये सब कर रहा हूँ जब मीडिया ने मेरे खिलाफ जंग छेड़ रखी है। और एक तरह से यही पैगाम वो अपने समर्थकों को देने की कोशिश कर रहे हैं, आमने सामने और ट्विटर के जरिए, बगैर मीडिया को बीच में लाए। और जैसा कि आपने वो अभी सुनवाया भी कि उनका पैगाम यही था कि जो आप अखबारों और टीवी पर पढ़ रहे हैं वो सब उनके शब्दों में फेक न्यूज है। उन्होंने कहा मीडिया बेईमान है, उसी भ्रष्ट तंत्र का हिस्सा है जिसे उन्होंने खत्म करने का वादा किया था। व्हाइट हाउस बिल्कुल कायदे से चल रहा है और जो वादे उन्होंने किए थे वो सब पूरा कर रहे हैं। तालियां और नारे वैसे ही लग रहे थे जैसे चुनावी दिनों में लगते थे। और देखा जाए तो अभी चुनाव खत्म हुए मुश्किल से 3 महीने गुजरे हैं, तो उनके जो कट्टर समर्थक थे वो अभी भी उनके साथ पहले की तरह से जोश में है। भले ही पूरे देश में जो उनकी लोकप्रियता की रेटिंग है वो काफी नीचे चली गई है, और हकीकत ये है कि पिछले 2 हफ्तों में उन्हें एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। वॉशिंगटन में मुसलमान बहुल देशों से आने वालों पर जो प्रतिबंध लगाया था उस पर अदालतों ने रोक लगा दी है। उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा है। उनके उन्हीं के जगह पर जो दूसरे उम्मीदवार मनोनीत किए गए उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया, और वॉशिंगटन में सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने समर्थकों के बीच आकर कहा जा रहा है कि ट्रंप की तरह महसूस करते हैं, और ये रैली एक तरह से कड़े सवालों से ध्यान बटाने के लिए भी कि लोग देखें कि वो कितने लोकप्रिय हैं, वो कोशिश भी मानी जा रही है। लेकिन जाहिर है कि सोमवार को फिर वॉशिंगटन लौटेंगे और देश चलाने की जो हकीकत है वहां उनके सामने वो वैसे ही बरकरार रहेंगी।
जी ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
लौटते हैं भारत की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। इस चुनाव में वो उन जिलों की विधानसभा सीटें भी शामिल हैं जो सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के सबसे ज्यादा प्रभाव वाली कही जाती हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इन 69 में से 55 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से कड़ी टक्कर मिल रही है। सुनिए लखनऊ से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट।
आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है मौजूदा विधानसभा में, उनमें से ज़्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, जबकि 2007 के विधानसभा चुनाव में इस चरण की ज़्यादातर सीटों पर बहुजन समाज पार्टी का कब्जा था। बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति दोनों चुनावों में लगभग बराबर थी। इसके अलावा इस चरण में उन जिलों की विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हो रहा है जिन्हें सत्ताधारी समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव के परिवार के ज्यादातर लोग इन्हीं जगहों से चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल इटावा जिले की जसवंत नगर सीट से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए पिछला प्रदर्शन दोहरा पाना क्या आसान होगा, बताते हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष मिश्र। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया जैसे समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले जिलों के अलावा राजधानी लखनऊ और कानपुर में भी आज ही मतदान होंगे। लखनऊ शहर की भी दो सीटों से मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग लड़ रहे हैं। लखनऊ कैंट से मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव का मुकाबला कांग्रेस छोड़कर बीजेपी से चुनाव लड़ रही मौजूदा विधायक रीता बहुगुणा जोशी से है। इसके अलावा कानपुर और उन्नाव में बीजेपी के दो वरिष्ठ नेताओं मुरली मनोहर जोशी और साक्षी महाराज की राजनीतिक ताकत का भी इम्तिहान होना है, क्योंकि ये लोग यहीं से सांसद हैं। जानकारों का कहना है कि इस चरण का मतदान काफी अहम है, क्योंकि ये आने वाले अन्य चरणों पर भी अपना असर छोड़ेगा। सुभाष मिश्र कहते हैं,
इस चरण में अगर बहुजन समाज पार्टी ने बढ़त अपनी बना ली तो मुझे लग रहा है कि फिर बाकी हिस्सों में जहां प्रदेश में चुनाव होना है वहां पर शायद बीजेपी और बीएसपी हो जाएगा, क्योंकि इस चरण के बाद से मैसेज ये चला जाएगा कि अगर ये अलायंस इस स्टेज में भी पिछड़ रहा है तो जो एंटी बीजेपी वोटर शायद बहुजन समाज पार्टी के वो पक्ष में चला जाएगा।
दिलचस्प बात ये भी है कि कई मौजूदा विधायक दल बदल कर चुके हैं, तो कुछ को अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिला है, जिससे या तो वो निर्दलीय लड़ रहे हैं या फिर किसी अन्य पार्टी के बैनर तले। ऐसे में मुकाबला और भी रोचक हो गया है। यूं तो चुनाव में जीत की उम्मीद और कोशिश हर पार्टी करती है, लेकिन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के सामने न सिर्फ अपनी सीटों को बचाने की बल्कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक और पारिवारिक प्रतिष्ठा कायम रखने की भी चुनौती है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
और अब सीधे चलते हैं लखनऊ समीर आत्मज मिश्र के पास। समीर, थोड़ी देर में मतदान शुरू होगा, आप कहाँ मौजूद हैं और क्या माहौल है वहाँ मतदान को लेकर?
जी अमरेश, मैं ये लखनऊ में हूँ और गवर्नर हाउस के सामने जो लोक निर्माण विभाग का दफ्तर है वहाँ एक मतदान केंद्र बना हुआ है। और अभी जैसा आपने कहा कि चूंकि मतदान 7 बजे से शुरू होगा तो अभी केवल यहाँ जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, पोलिंग एजेंट वगैरह हैं, वो लोग आना शुरू हुए हैं। मीडिया की OB वैन्स तैयार हो रही हैं, ट्राइपॉड लोग लगा रहे हैं। और चूंकि ये VIP इलाका है, अभी 9:45 पे कहा गया है समय है, राजनाथ सिंह भी आएंगे यहाँ मतदान वोटिंग करने के लिए। एक तैयारियां यहाँ पे लगभग मैं देख रहा हूँ कि बेसमेंट है दफ्तर का जिसमें कि ये पोलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। एक मतदान अधिकारी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आप किस तरीके से ये लोग कितने बजे आ गए और कैसे इन्होंने तैयारी शुरू की है। जी मैडम, आप बात करना चाहेंगे, बताएं जरा कैसे तैयारी हुई।
हेलो
जी, बताएं।
हाँ, एक्चुअली वो कल मॉर्निंग में 18th को 7 o'clock के हम लोग को वहाँ पहुँचना था जहाँ से मूव करनी थी पार्टी को। तो
जी जी
हाँ, तो फिर हम लोग वहाँ से सारे जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं सामान लेके मशीनें वो अपना EVM मशीन और वो लेके और हम लोग फिर करीब आफ्टरनून में या 2 PM पे पहुँच गए थे
जी।
फिर यहाँ तैयारियाँ वगैरह हुई, 3 पोलिंग पार्टीज हैं यहाँ पे
जी। तो ये लोग यहाँ रात से ही इसका मतलब यहाँ पे आए हुए हैं जैसा कि उन्होंने पहले भी हमसे बताया, और यहाँ सुरक्षा कर्मी भी काफी मात्रा में तैनात हैं, धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। और जो मतदान के एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स वगैरह हैं, विभिन्न पार्टी सहयोगी कार्यकर्ता लोग हैं, वो अपना यहाँ बैठना शुरू कर दिए हैं।
समीर, जैसे 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 दिन आगे बढ़ेगा लोगों में गहमा गहमी बढ़ेगी मतदान को लेकर। शाम के कार्यक्रम में हम दोबारा आपके पास आएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तीसरे चरण का चुनाव सत्ताधारी समाजवादी पार्टी के लिए बेहद अहम है। साल 2012 में इस इलाके में समाजवादी पार्टी की साइकिल खूब दौड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी इस इलाके में सेंध लगाने की तैयारी में है, वहीं बहुजन समाज पार्टी भी यहां दम दिखाने का दावा कर रही है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार और CSDS में भारतीय भाषा कार्यक्रम के संपादक अभय कुमार दुबे से बात की और सबसे पहले पूछा कि तीसरे चरण का चुनाव कितना अहम है।
देखिए, इस चरण में पिछली बार 2012 में समाजवादी पार्टी ने 55 सीटें जीती थी। बाकी जो दोनों पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तकरीबन हाशिए पे सिमट गई थी। कांग्रेस को शायद एक दो सीटें मिली थी इस इलाके से। तो समाजवादी पार्टी को अगर सरकार बनानी है तो उसे इस दौर में अपना ये प्रदर्शन कमोबेश कायम रखना होगा, वरना वो सरकार नहीं बना पाएगी, पिछड़ जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को अगर मुकाबले में रहना है तो उसे इस फेस में पहले दोनों चरणों के मुकाबले ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करना होगा।
उत्तर प्रदेश के चुनाव में जातीय समीकरण बिठाने की बात की जाती है, क्षेत्रीय समीकरणों की भी बात की जाती है, और समाजवादी पार्टी के लिए तो पारिवारिक समीकरण भी बनते बिगड़ते दिखाई दिए हैं। क्या इन सब चीजों का कोई असर होगा इस चरण में?
निश्चित रूप से असर होगा। समाजवादी पार्टी की जिन पारिवारिक समीकरणों का आपने जिक्र किया वो इस चरण में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा पहली नजर में देखने में लगता है कि इटावा और उसके आसपास की सीटों के ऊपर जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, यहाँ तक उन लोगों के लिए गृह जनपद है, वहां पर स्थिति यह है कि वहां अखिलेश के उम्मीदवारों को खुले भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। छिपे भीतरघात का नहीं, मैं कह रहा हूं उनको खुले भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। और अगर अखिलेश के पक्ष में एक मजबूत अंतरधारा नहीं हुई तो फिर वो भीतरघात अखिलेश के प्रत्याशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि वो मध्य उत्तर प्रदेश में जो गैर जाटव दलितों की एक बड़ी संख्या मौजूद है, इसमें खासतौर से पासियों का बहुमत है, उसको अपनी ओर खींच सकें। क्योंकि जो जाटवों को अपनी ओर खींचना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन वो पासी मतदाता मंडल का मन जीतने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी लंबे अरसे से कर रही है।
चुनौतियां बहुजन समाज पार्टी के लिए भी पहले दो चरणों के मुकाबले इस चरण में ज्यादा होंगी।
निश्चित रूप से मायावती कहती हैं कि वो सरकार बनाने जा रही हैं। जितने भी सर्वेक्षण हैं उन सर्वेक्षणों में वो मायावती तीसरे नंबर पर दिखाई पड़ रही हैं। तो ऐसी हालत में उन्हें इस चरण में कुछ चमत्कार सा करना होगा। भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी रणनीति है उसको धता बताते हुए समाजवादी पार्टी को पीछे धकेलना होगा। बहुजन समाज पार्टी के लिए तो ये बहुत मुश्किल काम है, देखिए वो क्या कर पाती है।
मैं वोटर टर्नआउट की भी बात करना चाहूंगा। जब पहले चरण का मतदान हुआ उसके बाद चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं की तारीफ की, दूसरे चरण में रुझान और बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तीसरे चरण को लेकर क्या कोई संकेत हैं और इससे क्या आगे के चरणों के लिए कोई और रुझान की जानकारी मिल सकती है?
देखिए, मतदान का प्रतिशत इस बार बढ़ने का कारण मुख्य तौर पर मेरी समझ में आ रहा है कि राजनीतिक प्रतियोगिता बहुत तीखी है। सभी पक्ष बहुत जम के अपने अपने समर्थक मतदाताओं को निकालने में लगे हैं और मतदान केंद्रों तक पहुंचाने में लगे। विभिन्न सामाजिक समुदाय भी जो हैं वो अपनी अपनी राजनीतिक वफादारियों के लिहाज से उत्साह से वोट कर रहे हैं। आप देखिए, सुबह के वक्त होता यह है कि यादव मतदाता, मुसलमान मतदाता, दलित मतदाता बहुत बड़े पैमाने पर निकलते हैं, और दोपहर के बाद मुझे लगता है कि ऊंची जातियों के मतदाता निकलते हैं। सभी लोग जम के वोटिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि इस दौर में भी 69 सीटों का मतदान प्रतिशत बहुत अच्छा रहे, क्योंकि हर पार्टी कोई कमी नहीं रखना चाहती।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे। श्रोताओं, आपको बता दें कि चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें आप हमारी वेबसाइट bbcsindhi.com पर भी दिन भर देख पढ़ और सुन सकते हैं।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
दिल्ली की एक निचली अदालत ने राजधानी में 29 अक्टूबर 2005 को हुए सिलसिलेवार 3 बम धमाकों के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। 3 अभियुक्तों में से 2 यानी मोहम्मद रफीक शाह और हुसैन फाजिली बरी कर दिए गए। तीसरे अभियुक्त तारिक अहमद डार को सजा तो सुनाई गई लेकिन बम धमाकों में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े होने के कारण। डार को 10 साल की सजा मिली। जेल में 10 साल गुजर जाने के कारण वो भी बरी हो गए। सरोजनी नगर मार्केट वाले बम धमाके में किरण सलूजा के पति लालचंद सलूजा समेत 50 लोग मारे गए थे। उस दिन हुए धमाकों में ये सबसे घातक बम विस्फोट था। किरण सलूजा आज अपने पति की जूस की दुकान चलाती हैं। मार्केट में उनसे मिलने पहुंचे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद।
इस समय मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूँ। ये एक भीड़ भाड़ वाला मार्केट, और ये जिस जगह पे मैं हूँ वो वही जगह है जहाँ पर 2005 29 अक्टूबर को ब्लास्ट हुआ था और उसमें 50 के करीब लोग मारे गए थे इस जगह पे। नमस्ते, आपको कब पता चला कि ये हादसा हुआ है और आप कहाँ पर थी उस समय?
मैं उस समय घर पे थी और घर पे मुझे पता चला कि सरोजनी नगर में ब्लास्ट हुआ है। तो मुझे किसी रिलेशन वालों का फ़ोन आया कि सरोजनीनगर मार्केट में ब्लास्ट हुआ है। मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरे हस्बैंड से बात हुई है 4 बजे। तो जब मैंने टीवी ऑन करा तो उसमें आ रहा था, उससे पहले फ़ोन करके देखा शॉप पे, तो फ़ोन कोई भी नहीं उठा रहा था। फिर पता चला कि बम ब्लास्ट हो गया है। जब टीवी ऑन करा तो उसमें शॉप का सीन आ रहा था, तो
अब तो समझ में आ गया कि आप ही की शॉप है।
शॉप देख के मुझे पता चला कि ये तो हमारी शॉप है। तो उस समय एकदम से सुन रह गए कि ये क्या हुआ। मुझे घर पे ही रात को 10-10:30 के बाद मुझे पता चला कि अब मेरे हस्बैंड नहीं रहे हैं।
अदालत का फैसला आया और दो लोग उसमें बरी कर दिए गए, तो आपको क्या, आपकी प्रतिक्रिया उस वक्त क्या थी, क्या महसूस किया आपने अदालत का फैसला सुन के?
भाई जब बरी कर दिया गया कि उनका कोई दोष नहीं है तो ये गलत हुआ, उनको तीनों को ही फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। पुलिस वालों ने कहा था कि वो पकड़े गए हैं, उस समय तो इतने सालों से तो मैं यही सुनती आ रही थी कि पकड़े गए हैं, जेल में हैं, पकड़े गए हैं, जेल में हैं। तो आज 12 साल के बाद वो कह रहे हैं कि वो नहीं है, तो कौन थे जिन्होंने ब्लास्ट करा? तो हमारे लिए तो 12 साल से हम लोग इसी ख्याल में थे कि आज उनको फांसी होगी, आज होगी। गलती हुई है कि वो सही जने को पकड़ नहीं पाए हैं, या कुछ ऐसा हुआ कि उनकी जो उन्होंने तहकीकात करी वो गलत हुई, जो उनको ये सज़ा सुनाई गई। तो मैं तो आशा करती हूँ कि इनको फांसी की सज़ा ही होए,
जो भी इसमें इन्वॉल्व हो उसको फांसी की सज़ा।
बिल्कुल, जो इसमें इन्वॉल्व हो उसको फांसी की सज़ा ही होए, क्योंकि हमें 12 साल हो गए हैं यही इंतज़ार करते करते। मेरे बच्चे उस समय छोटे थे, आज बड़े हो गए, तो मेरे तो दुनिया ही बिखर गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस हादसे में चले गए, और हमें दुकान का भी, मेरे को संभालना और अपने बच्चों को भी संभालते हुए, मैंने दुकान को भी संभाला, बच्चों को भी संभाला। तो आज मेरे बच्चे 14 और 15 साल के हैं, उस समय तो 2 और 3 साल के।
कितने बच्चे हैं आपके?
2 हैं, एक बेटा और एक बेटी हैं।
तो उनको आप ही ने उस वक्त, उसके बाद से आप ही ने संभाला?
हाँ जी, उस समय वो 2-3 साल के थे जब ब्लास्ट हुआ। बिल्कुल, दोनों का ही मैंने अपने बच्चों को प्यार दिया, माता का भी और पिता का भी। पर कहीं ना कहीं बच्चों को ही अपने पापा की कमी महसूस होती है, कि जब पेरेंट्स मीटिंग स्कूल में होती है तो फादर की याद आती है, बर्थडे या कोई फेस्टिवल उसमें अपने पापा की उनको याद आती है। पर मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, पर उनको कहीं ना कहीं थोड़ा एहसास बच्चों को पिता का होता ही है।
सरोजनी नगर मार्केट में चरमपंथ का शिकार हुई महिला से बात कर रहे थे जुबैर अहमद। पिछला हफ्ता पाकिस्तान के लिए बहुत हिंसा भरा रहा। पाकिस्तान और भारत के उर्दू अखबारों ने इस और दूसरी खबरों को कैसे कवर किया है, उसे संकलित किया इकबाल अहमद ने और उसे सुना रही हैं हरिता कांडपाल।
पिछले हफ्ते पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में धमाकों और चरमपंथी हमलों से जुड़ी खबरें ही सुर्खियों में रहीं। पाकिस्तान में पिछले हफ्ते सिंध, लाहौर, पेशावर, फाटा और क्वेटा में हमले हुए थे। सबसे बड़ा हमला सिंध प्रांत में मशहूर सूफी संत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह पर हुआ, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 80 से ज्यादा लोग मारे गए और 250 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रोजनामा दुनिया ने लिखा है कि हमले के बारे में पहले से खुफिया जानकारी थी, लेकिन उसके बावजूद दरगाह की सुरक्षा में केवल 2 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। अखबार लिखता है कि जख्मियों को ठेलों पर ले जाया जा रहा था। अखबार के अनुसार जिस जगह दरगाह है वहां से प्रांत के 3 मुख्यमंत्री हुए हैं, लेकिन इलाके में एक भी ढंग का अस्पताल नहीं है। हमले के बाद हरकत में आई पुलिस, पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने 100 से ज्यादा चरमपंथियों को मारने का दावा किया। रोजनामा जंग लिखता है कि पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठन जमात उल अहरार के प्रशिक्षण शिविर और 4 कैंपों को तबाह कर दिया है। वहीं रोजनामा नवाए वक्त ने लिखा है कि अफगान राजनयिक सेना मुख्यालय में तलब, अफगानिस्तान में रह रहे 76 चरमपंथियों को पाकिस्तान के हवाले करने की मांग की गई। रोजनामा जंग ने अपने संपादकीय में लिखा है कि सैन्य ऑपरेशन जर्ब ए अजब से लग रहा था कि चरमपंथियों की कमर टूट चुकी है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से सारा देश दहशतगर्दी की नई लहर की चपेट में आ चुका है। रोजनामा एक्सप्रेस ने संपादकीय में लिखा है कि दहशतगर्दों को बख्शना एक खुदकुशी के बराबर है। वहीं भारत में छपने वाले उर्दू अखबारों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरें ही हर जगह छाई रहीं। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली में पहली बार एक रैली को संबोधित किया और इसी पर जो खबरें उर्दू अखबारों में छाई रहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया हरिता उर्दू अखबारों की समीक्षा के लिए जो इकबाल ने संकलित की थी। 59वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक कैटेगरी में सिंग मी होम एल्बम को अवार्ड मिला। इस एल्बम में तबला वादक संदीप दास की बनाई धुन भी शामिल है। पटना में पैदा हुए संदीप अब अमेरिका में रहते हैं और वही हैं इस हफ्ते के न्यूज मेकर। बीबीसी संवाददाता वैभव दीवान ने उनसे खास बातचीत की।
अब कहो, वाह उस्ताद वाह।
BBC,
किसने बनाया तबला? कहां से आया तबला? कोई कहता है कि 13वीं शताब्दी में सूफी संत कवि अमीर खुसरो ने इसे बनाया, तो कोई कहता है 18वीं शताब्दी में सिदर खान दरी दिल्ली दरबार वाले ने इसे बनाया। पर जिसने भी बनाया, कमाल बनाया। हेलो नमस्ते, मैं हूं वैभव, स्वागत है आपका बीबीसी न्यूज मेकर्स पर। आज शो पर तबला माइस्ट्रो संदीप दास से बात। तबला वादक संदीप अब अमेरिका रहते हैं और मैंने उनके घर बोस्टन उन्हें फोन किया और पूछा, संदीप जी मुबारक हो ग्रैमी जीतने के लिए, कैसा लगा जब स्टेज पर बेस्ट वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम अवार्ड अनाउंस हुआ?
देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले धड़कन रुक चुकी थी और एकदम से जब अनाउंस हुआ तो कुछ सेकंड के लिए तो लगा कि मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है कि नहीं, बट जैसे ही रियलाइजेशन हुआ, इफ यू सी द ऑनलाइन उनका जो वीडियो है कि वी जम्प्ड एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स द स्टेज, और सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि आई वाज रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री।
सिल्क रोड एंसेंबल का पार्ट है आप, बड़े बड़े म्यूजिशियंस का कलेक्टिव है ये, और जब आप सब पहुंचे अवार्ड लेने के लिए ग्रामीज, तो कोई टक्सीडो में था, कोई कोट पैंट पहने हुए था, पर आप गहरे लाल रंग का गोल गले का कुर्ता पजामा पहने स्टेज पर पहुंचे।
मैं चाहे कहीं भी रहूं, दुनिया के किसी भी स्टेज पे रहूं, चाहे मैं यूएनओ में बजा रहा हूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बजा रहा हूं, चाहे मैं रॉयल अल्बर्ट हॉल में बजाया हूं, हॉलीवुड बॉल में बजाया हूं, हमेशा कुर्ता पजामा।
एक पहचान दिलाता है भारतीय पहनावा कुर्ता पजामा। इस सेम कैटेगरी में पंडित रविशंकर की बेटी सितारिस्ट अनुष्का शर्मा भी नॉमिनेटेड थी। संदीप दास से मैंने उनकी इस एल्बम के बारे में जाना और जाना उनकी कंपोजिशन के बारे में।
सिंग मी होम इज एन एल्बम विद डिफरेंट ट्रैक्स, उसमें जैसे एक मेरा कंपोजिशन है जिसका नाम है इफ यू शैल रिटर्न। तो हमारे इंडिया में बहुत मशहूर है भाटियाली धुन, जो गैंजीज डेल्टा में जो मछुआरे होते हैं वो जब नाव खेते हैं तो नाव खेने वक्त वो गाना गाते हैं, बड़ा दर्द भरा होता है वो। तो उस धुन को मैं गुनगुना रहा था तो मेरे जापानीज म्यूजिशियन फ्रेंड कोजीरो युमेजाकी, उन्होंने ये सुना और उन्होंने कहा, अरे हमारे जापान में भी एक ऐसा धुन है बहुत मिलता जुलता।
सर धुन आपको बतानी पड़ेगी।
ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल ट्यून जो सबको स्पेशली बंगाल असम उस रीजन से सब लोगों को बताता है। तारा 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 तारा। It's a very simple tune.
मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने सुनी हुई है ट्यून।
100% हम लोग सब बड़े हुए इन दोनों के साथ।
तो ये थे तबला माइस्ट्रो संदीप दास ऑन बीबीसी न्यूज मेकर्स।
और अब सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज इसी सप्ताह से शुरू होने जा रही है। उससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने दमखम को आजमाने के लिए मुंबई में भारत ए के खिलाफ 3 दिवसीय अभ्यास मैच खेल रही है, जहां कल खेल के दूसरे दिन उसके गेंदबाजों को समझ आ गया कि भारत की पिचों पर उन्हें एक एक विकेट लेने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ेगा। कल जब दूसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब भारत ए का स्कोर 4 विकेट खोकर 176 रन था। स्टंप के समय श्रेयस अय्यर 85 और ऋषभ पंत 3 रन बनाकर नाबाद थे। सलामी बल्लेबाज प्रियांक पांचाल ने 36 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के जैक्सन बर्ड ने 15 रन देकर 2 और ऑफ स्पिनर नॉथन लियन ने 72 रन देकर 2 विकेट हासिल किए।
और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के मेलबर्न शहर में एक रैली में फिर से मीडिया को कोसा, कहा मीडिया सच नहीं दिखाना चाहता बल्कि अपने एजेंडे पर चलना चाहता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर आज मतदान होना है। इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, लखनऊ और कानपुर में मतदान होगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेन की सेना के बीच सोमवार से युद्ध विराम लागू होगा। बीबीसी समाचार।
आज की सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।